نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 46 آیت نمبر 102 سے 110 سورة آل عمران. لیسن نمبر 46 آیت نمبر 102-110 سورة آل عمران. آج کے سبق کا خلاصہ, اور آج کا خلاصہ ہی آیتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک منہج دیا. آج کے اس سبق میں ہمیں امت کی بقا کے تین نقطے دکھیں گے. یعنی آج کے دور میں جب ہم مسلمانوں کو بکھری ہوئی بھیڑوں کی طرح بکھرا ہوا دیکھتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی, یہ کیسے سنبھلیں گے. تو آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ یہ چیز دیکھیں گے کہ تین نقطے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص فرق جو امت مسلمہ کا دوسری امتوں سے ہے, اگر ہم سورۃ آل عمران کو سورۃ البقرہ کے ساتھ جوڑ لیں تو یہاں سے اب سورۃ آل عمران کا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے. یعنی آدھی سورت ہم پڑھ چکے, یہاں سے ہاف ہے. پہلا حصہ دو رکوعوں پہ مشتمل ہے جو اب اس کے بعد آگے ہمارے چلیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورۃ البقرہ کا نصف کہاں ہوا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو, وقولوا انظرنا واسمعوا, اور کہو کہ ہماری طرف دیکھیے اور ہمیں سنیں. وہاں ایمان والوں کو یہود کی ایک سازش کے جواب میں کیئرفل کر دیا گیا تھا کہ تم رائنا کا لفظ کہنا چھوڑ دو. بالکل اگر آپ اس کے پیرلل ادھر سورۃ آل عمران میں لیں تو پچھلے سبق کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین, کہ ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کے گروہ کی پیروی کی تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. یہ بالکل پیرلل ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جوڑا ہیں, زہرہ وین ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آیت پہ آیت جڑ رہی ہے. آدھی پہ وہ ہے, آدھی ادھر ہے. بالکل یہاں سے اب آگے یعنی مسلمانوں سے خطاب, 11واں رکوع جو آج ہمارے سامنے ہے اس سے شروع ہوگا. یہاں تین نکات آج سمجھ لیجئے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ امت جو خاص امت ہے, قیامت تک رہنے والی ہے, اس امت میں لوگوں کے اندر کچھ زوال آئے گا. اسلام کو کبھی زوال نہیں آیا, لیکن امت کے اندر رہتے ہوئے اوور آل کچھ نہ کچھ ڈارک اور گرے ایراز آئیں گے. لیکن اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو اٹھا دوں گا کہ جو امت کا بوجھ اٹھا لیں گے, دین کو ریوائز کرنے والے, دین کو اچھی طرح لے کے چلنے والے, اور یہ امت کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. آیت نمبر 102, 3 اور 4, یہ تین آیتیں بالکل اس وقت امت مسلمہ کا موٹو ہونی چاہیے, اور بالکل یہی تین آیتیں 30ویں پارے کی سورۃ الاسر, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے, لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد کیا کہا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین آیتیں سورۃ الاسر کی ڈیٹیل ہیں, کہ تین ایسے نکات جس پہ آج امت مسلمہ کو جڑنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہیں میں آپ کو اپنے لفظوں میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, پھر آپ دیکھیے گا کہ آیتوں پہ کیسے فٹ ہوگا. سب سے پہلا کام جو امت اور مسلمانوں کی اس وقت ریوائیول کے لیے ضروری ہے, اور یہی میتھڈالوجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, وہ کیا ہے, فرد کی اصلاح, لوگوں کا تزکیہ, پیوریفیکیشن آف سول. یعنی آپ نے امت جو پیدا کی, جو اپنے پیچھے لوگ چھوڑے, ان کی اصلاح کی کوشش. یعنی آج بھی ایسا ہی ہوگا, کسی جگہ کوئی گروہ اٹھے یا مسلمان آن دی ہول امت بن کے اٹھیں, ان کو کیا کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو تیار کرنا, ان کی نماز, روزہ, خدا خوفی, ان کو حلال حرام کا فرق, ان کے معاملات. اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے, تقوی. تو آیت نمبر 102 میں ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے, پہلا گول کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کے لوگوں کو لٹرل کیا جائے, ان کو پڑھایا جائے, ان کو علم سے جوڑا جائے. दूसरी चीज उम्मत की बका के लिए क्या है कि वो लोग जिनका तज़किया हो चुका, अब इनको आपस में जोड़ा जाए, उनके अंदर यूनिटी इत्तेहाद हो। और जोड़ने के लिए ग्लू की जरूरत होती है ना। ग्लू क्या है? आयत 103 उसका जवाब है, वा तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीयन। इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि जोड़ने वाली चीज अल्लाह की किताब और अल्लाह का दीन है, और फिरकावारियत इसका जहर है। दो काम हो जाएं तो तीसरा स्टेप फिर क्या है कि वो गिरोह जिनका तज़किया हो गया और जो आपस में जुड़े हुए हैं, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस की सूरत में, अब उनको बताया जाए कि तुमने करना क्या है। ये भी ना पता हो करना क्या है, तो जितने मर्जी नेक लोग अच्छे लोगों बेचारों को पता नहीं होता, तो उसका जवाब हमें आयत नंबर 104 में मिलेगा इंशाल्लाह आज के इस हिस्से में कि उम्मत मुस्लिमा को क्या करना है। और उस हिस्से में हम देखेंगे तीन काम है करने के, वो आयत के साथ ही जोड़ूंगी इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर 105 और 106 में अगर हम ये काम नहीं करते तो क्या होगा, क्यामत के दिन भी और दुनिया में। यानी आप कह लें कि इस वक्त जो ग्लोबल ज्योग्राफी है ना, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ये आयत उसकी तफसीर है। ठीक है, जो काम कर जाएंगे उनका दुनिया का इंजाम और आखिरत का इंजाम दिखा के आखिरी आयतें जो हैं आयत नंबर 108 से 110 तक जो है, उसमें फिर अल्लाह ताला अपनी तौहीद की बात करके हम मुसलमानों को बताते हैं कि देखो तुम सोच लो कि कितनी बड़ी जात ने तुमको पैदा किया। जब कोई कौम अपनी जिंदगी का मकसद खो देती है तो वो जानवरों का गल्ला बन जाती है, और इसके नुकसानात क्या होते हैं, आइए अब हम इस पूरे मजमून को आयतों के साथ देखते हैं। आज की पहली बात क्या थी कि सबसे पहले अफराद की किरदार साजी, शख्सियत साजी। जब तक किरदार नहीं होगा कुछ भी बात नहीं बनेगी। जब तक किसी इंसान के अंदर खुद अल्लाह का खौफ और तकवा नहीं होगा तो तब तक दूसरे भी उसको कोई फायदा नहीं दे सकेंगे। यहाँ कह लीजिए कि बराह रास्त खिताब मुसलमानों को है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। नबी के उम्मती, खुद को मुसलमान कहने वाले, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ने वाले, अल्लाह की नबी की उम्मती बराह रास्त, यानी वो ईमान वाले कि जिनको हकीकत में आप कौन सा ईमान वाला कहेंगे, जो ईमान का दावा कर चुके हो। क्या करो? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कितना डरो? हक का तुकाती ही, जितना उससे डरने का हक है। और क्या ना करो? वला तमूतुन्ना इल्ला, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर, वान तुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यहाँ आप देखिए कि इस आयत में ईमान वालों को खिताब किया गया, तो सवाल पैदा होता है कि ईमान वाला कौन होता है, मोमिन कौन है? तो लिख लीजिए कि ईमान वाले दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं कानूनी ईमान वाले, कि कानून की रोशनी में मुसलमान, और एक होते हैं अमल की रोशनी में मुसलमान। कानून की रोशनी में कौन मुसलमान है? मसलन आप देखिए कि मैं और आप कौन है? मुसलमान है। मजहब के खाने में, हमारे रिलीजन के खाने में क्या लिखा है? मुस्लिम्स। हम नमाज पढ़े ना पढ़े, हम रोजा रखे ना रखे, हम जितने मर्जी गलत काम करें, लेकिन कभी आपने ये देखा कि किसी के नाम के आगे से लफ्ज मुस्लिम हट जाए? नहीं कटेगा ना। तो मुसलमान होने का एक दर्जा क्या है कि कानूनन बंदा मुसलमान हो, रिलीजन उसका इस्लाम हो, और इस्लाम की बात हो गई। ठीक है, हत्ता कि आप देखिए कि बड़े से बड़े गुनाह भी कोई करता है ना मुसलमान, तो उलमा का इस पे इज्तमा है कि वो काफिर नहीं हो सकता। ये एक अलग बात है कि कुछ अमल इंसान को कुफर पे ले जाते हैं और किसी एक दर्जे का वो काफिर करता है, जैसे अभी पिछले ही सबक में हमने हज के इनकार करने वाले को कुफर की बात कही, लेकिन नाम उसका मुसलमान होगा, ये तो है खत्म। ये कभी नहीं आपने सुना कि कोई मुसलमान मर जाए और लोग उसको दफन ना करें, नमाज जनाजा ना पढ़े, कि जी ये नमाजी नहीं था, ये बुरा था। हमेशा कोई जब मरता है तो सबसे पहले लोग उसके साथ मुस्लिम रिचुअल्स करते हैं, उसको इस्लाम के मुताबिक ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, दूसरी किस्म मुसलमान होने की क्या है? जो अमल के साथ इस्लाम दिखाते हैं। वो कौन सा इस्लाम होता है? वो तकवा की वो हालत होती है कि जो बंदे को हर हाल में अल्लाह का बंदा बना दे। और यहाँ इसी का हुक्म है कि इत्तकुल्लाह। मजहब के खाने में तुम्हारा नाम मुसलमान तो है, लेकिन सिर्फ ये नाम का इस्लाम ना हो बल्कि तुम इस इस्लाम को अपनी जिंदगी में दिखाओ। इत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही, अल्लाह से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए। क्या मतलब है? इस्लाम के अहकाम पूरे करो, फराइज को अदा करो, मनहियात यानी जिन चीजों से रोका गया उससे रुक जाओ। जब यह आयत उतरी सहाबे कराम परेशान हो गए, इतना परेशान हुए कि कांपने लगे, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह से उतना डरे जितना हमें डरने का हक है। हम तो उतना ही डर सकते हैं जितना कि हमारे अंदर ताकत है, बात समझ रहे हैं? और आप कह माने ना माने, लेकिन पूरे कुरान में तकवा की डेफिनेशन और तकवा की अहमियत को बताने वाली इससे खूबसूरत आयत कोई नहीं है। हक का तुकात ही वला तमूतुन्ना इल्ला वान्तु मुस्लिमून, यानी अल्लाह से उतना डरो जितना डरने का हक है। जब सहाबा घबराए तो सूरह तगाबुन की आयत फिर नाजिल हुई कि ओके डोंट वरी, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, आयत नंबर 16 है सूरह अल तगाबुन, कि अच्छा अल्लाह से उतना डर लो जितना तुम डर सकते हो। इस बात को सुनकर सहाबा की जान में जान आई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि हक का तुकाती ही क्या है, अल्लाह से डरने का हक इससे क्या मुराद है? कहते हैं कहीं युता अल्लाह फला युसई, अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। आई युस्कर फला तंसहु, उसका जिक्र किया जाए यानी उसको याद रखा जाए, उसको भुलाया ना जाए, यानी कि खुशियों में उसको भूल जाए और गमों में याद कर ले। मुसलमान की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अल्लाह याद ना हो। सच बताइए, कोई माँ बाजार जाके भी अपने बच्चे से गाफिल होती है? ये अलग बात है कि थोड़ी देर इधर उधर हो जाए, लेकिन जब होश आएगी तो एकदम परेशान होगी, मेरा बच्चा किधर है? तो एक माँ का दिल जिस तरह बच्चे में पड़ा रहता है ना, तो मुसलमान का दिल इस्लाम में पड़ा रहता है। उसको हर जगह अपने दीन ईमान की फिक्र है, मेरी नमाज तो नहीं चली गई, मेरा रोजा तो नहीं खराब हो रहा, मेरी निगाहें तो नहीं गंदी हो रही, मेरा वक्त तो नहीं जाया हो रहा, मेरा माल तो नहीं जाया हो रहा, मेरी एनर्जी तो वेस्ट नहीं हो रही। हर हालत में बंदे को फिक्र क्या है कि मैंने अपने रब को याद करना है। और कहते हैं कहीं युश्करा फला युकफर, तीसरा हक क्या है तकवे का? कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और उसका इनकार यानी उसका कुफर ना किया जाए। हकीकत ये कि अल्लाह को बंदे से यही मतलूब है कि तुम अपने रब को याद रखो। आप देखिए कि तकवा ही वो चीज़ है जिसको पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं, और सारे मसाइल का बुनियादी हल क्या है कि मुसलमान के अंदर तकवा पैदा हो। सिर्फ जाहरी नेकियां नहीं, रस्म व रिवाज वाली नहीं, रिचुअल्स वाली नेकियां नहीं, हज उमरे वाली नहीं, फूलों के हार गले में पहनने वाली नहीं, बल्कि अंदर बदल जाए। जिसका अंदर बदल गया ना, आपको उसकी शक्ल से बताएगा कि उसका अंदर बदल गया। बस अब हम समझते हैं कि बाहर बदलना यह है खुद को कि हिजाब पहन लो और निकाब पहन लो तो और गहरा रंग है, ठीक है फर्क पड़ता है इससे, लेकिन याद रखिए कि किसी के अंदर अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह के बारे में इंसान संजीदा हो जाए, ये चीज उसको बाकी तमाम चीजों से बेनियाज करती है। उसके चेहरे पे एक रंग आता है और एक जानता है। आप देखिए कि हमारा हाल क्या, कि आम हालात में बहुत मुस्लिम होते हैं, लेकिन जरा खुशी इस्लाम गया, गम इस्लाम गया। आपको पता है कि हजरत हंसा रजी अल्लाह अन्हा सहाबिया थी, कुफर की हालत में थी, तो इनका भाई फौत हो गया, सखर नाम था उसका, स्वाद से स्वाद खारा, रोना पीटना डाल दिया, मरसिए पड़े उसके नाम पे। लेकिन जब इस्लाम आया, जंगे कादसिया के अंदर इनके चार बेटे शहीद हो गए यके बाद दीगरे, और ये माँ सब्र कहती है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे शुहदा की माँ बना दिया, अल्लाह ने कहा कि चलो तुम्हें मैंने शहीद की माँ बना दिया। तो इस्लाम बंदे की तरजीहात को बदल देता है। आज हमारा नाम मुसलमान है, लेकिन क्या हकीकत में हम ईमान वाले हैं? क्या हकीकत में आज हम अपने आप को इस कैफियत में रखते हैं कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुझे मरना नहीं मगर इस्लाम की हालत में? क्या मतलब, क्या मुझे अपने मरने का वक्त पता? नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं कोई गलत काम करते हुए मर गई तो इस आयत पे अमल तो नहीं होगा। तो गोया कि यहाँ ये बता दिया कि ईमान वाला जो होता है हर वक्त इस फिक्र में होता है कि बस ये गुनाह मैं करने लगा ना, इसी पे मेरी मौत आ जानी है, ये नाफरमानी जो मैं अपनी दोस्त की खुशी के लिए कर रही हूँ ना, इसी पे मेरी पकड़ हो जानी है, और ये रिश्तेदार को खुश करने के लिए कर रही हूँ ना, तो बस देखना मेरी इसी वक्त मौत के फरिश्ते ने रूह कब्ज करनी है, और इसके बाद देखना कि मैंने दुनिया से चले जाना है। इस तरह काम पे, इस तरह काम पे आप यकीन करें कि एक ईमान वाला जो होता है वो गुनाह को पहाड़ समझता है कि मेरे सर के ऊपर पड़ेगा, और काफिर और फाजिर मुनाफिक गुनाह को नाक पे बैठी हुई मक्खी की तरह उड़ा देता है। अरे छोड़ो, अभी मैं जवान हूँ। यू आर टीन एज, स्वीट एज, फला एज, यू लिव वंस। इस तरह गुनाहों को हल्के से हल्का लोग समझने लगते हैं कि उनको फिर एहसास क्या होता, सब करते हैं। आप अपने लिए एक मियार रखें। दूसरों को तो हम नहीं छेड़ते, लेकिन हम खुद को छोड़ते भी नहीं है। दूसरों को छेड़े ना, खुद को छोड़े ना, ये एक अपने लिए मियार रखें। हर जगह अपने आप को डांटे, तड़पे, फिक्र करें अपनी कि मैं कौन हूं, मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने कहाँ रखा, क्या किया है। और वो क्या है कि अपने छोटे से छोटे गलत अमल पे भी इंसान नजर रखे और दूसरे की बड़ी बड़ी गुनाहों को ओवरलुक कर दे। कोई बात नहीं, चलो खैर है, ये है। हम क्या कहते हैं, अल्लाह नाराज हुआ, वो खैर है, उसको मना लेंगे। बस दोस्त ना नाराज हो, रिश्तेदार ना नाराज हो, शोहर ना नाराज हो, नहीं ये नहीं करना। अल्लाह की नाराजगी के डर से डरो। वो रूठ गया तो क्या बनेगा, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे। और आप देखिए कि इंसान को एक तो डर होता है ना किसी इंसान का, एक डर होता है उसकी नाराजगी का डर। फर्क क्या दोनों का। मसलन पुलिस मैन का डर है, हम अपनी बेल्ट बांध के रखते हैं, मोहब्बत तो नहीं कर रहे होते उससे, मजबूरी में बांध रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमें अपने, मिसाल है कि उस्ताद का डर है, तो उस्ताद ने क्या कहना है, ये डर है ना कि वो हमसे नाराज हो जाएंगे या उनका दिल दुखेगा। तो उसमें और पुलिस मैन के डर में फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह का डर कौन सा चाहिए, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, नहीं ये डर नहीं चाहिए। अल्लाह का डर चाहिए कि वो जुल्मतीन वदूद अर रहमान अर रहीम जात है। मैं कितनी ना शुक्रिय हूं कि अपने रब की नाराजगी को मोल ले लेती हूँ और दूसरों को खुश रखती हूँ। और यही एहसास बंदे को गुनाहों से बचाता है और होते 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 ये तकवा बन जाता है। किस चीज से इंसान बचे, इत्तकु रब्बकुम, बचो। सबसे पहले कुफर से बचना है, अल्लाह के इनकार से बचो। हर एक पूछे आज की सोसाइटी में कितने मुनकरे खुदा बैठे हैं। फिर शिर्क से बचो, सेकंड दर्जे पे, कि अल्लाह को तो माना है, अब अल्लाह के साथ किसी दूसरे और को ना शरीक करो। फिर तीसरे दर्जे पे कबीरा गुनाहों से बचना, कबायर, मेजर सिंस। और उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नापसंदीदा चीजों से बचना। चाहे हराम का लफ्ज नहीं आया, चाहे उसको मकरूह नहीं कहा गया, चाहे उसको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बस पसंद नहीं है। अब आप सिर्फ इस क्राइटेरियन पे थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लें। एक उछटती हुई निगाह जरा आप अपने ऊपर डालें, किसी दूसरे पे डालने की जरूरत ना, किसी की बेटी पे ना किसी की बहन पे, अपने ऊपर डालें। सर से पांव तक अपने आप को देखें, अपने हाल हुलिये में, अपने रहन सहन में, बोल चाल में, आंखों के इस्तेमाल, कानों के इस्तेमाल, और फिर रात को बिस्तर पे बैठ के खुद से पूछें, आज सारे दिन में जो कुछ मैंने किया, जो मैंने पहना, जो मैं बोली, जो मैंने देखा, क्या अल्लाह और उनका रसूल इसको पसंद करेगा? आप सच बताएं। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। जंग बच्ची है कोई, वो सिनेमे में जाना चाहती, मूवी देखने जाना चाहती है, और उसको ये पता है अच्छी तरह कि माँ बाप से पूछा तो वो नहीं मानेंगे, नहीं जाती। किसी दिन कोई जबरदस्ती उसको मजबूर करता है, दोस्त उसकी या कोई भी, चलो कुछ नहीं होता ना बताना। आप मुझे ये बताइए कि अगर वो छुप छुपा के बगैर बताए वहां चली गई, उसको मजा आ रहा होगा, वहां गम क्या लगा होगा? अगर खबर मिल गई तो क्या होगा? वो मूवी जो मे भी कोई फनी मूवी हो सकती है, कोई हंसी मजाक वाली चीज हो सकती है, लोग हंस रहे हैं और उसके अंदर से दिल बैठ रहा है। एक तो ये है कि चोरी आई हो, और अगर दूसरी भी सूरत इससे भी दर्जे की नीचे की हो जाए कि माँ बाप ने मना किया नहीं जाना, खबरदार गई, फिर भी चले गए कि नहीं बताऊंगी, आप सच बताएं कि उस हॉल में बैठे हुए क्या उसको एंजॉयमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अब आप सोचिए माँ और बाप, एक छोटा सा परतौ है रिश्तों का, लेकिन जिस बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैं इस हॉल में बैठा हूं, मैं इस स्क्रीन के आगे बैठी हूं, मैंने ये पहना है, मैं ये खा रहा हूं, पी रहा हूं, क्या आसमान पे अल्लाह को अच्छा लग रही हूं मैं? और सबसे बड़ी बात इलाही जोर जाऊं उसकी तरफ पलटना भी है। फिर इंसान ये हो ही नहीं सकता कि वो इंजॉय करे। वो गुना की महफिल में बैठ के खुद पे लानत भेज रहा होता है, लानतान करता है कि तुमने क्या फैसला किया, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा तुफ है, कि अल्लाह की इतनी नेमतों को खाकर, उसकी इतनी चीजों को इस्तेमाल कर कर तुम इस तरह के गलत काम करती हो। तो तकवा क्या है? कि बंदे को अल्लाह की शर्म आए, लज रखना, हया रखना। बात दफा माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो हमारी हया रखना, देखो हमें बदनाम ना करना, देखो शहर में हमारी बड़ी इज्जत है, कहते ही रहते हैं ना। आज तो मुझे नहीं पता कोई कहता है कि नहीं, लेकिन हमने अपने दौर में बड़ों के मुंह से ये सुना है। लड़कियों से कोई इतना फिक्र नहीं होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को भी। लड़कों को मैंने देखा है कि माँ बाप ये बातें पढ़ाते थे कि देखो ये ना करना, वो ना करना, और हमारी बड़ी इज्जत है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि माँ बाप से अल्लाह का हक कितना बड़ा है। अब 3 पारे पढ़ने के बाद मेरे अंदर कितना तकवा आया है, इसका इजहार मेरी जिंदगी से होगा, मेरे जीने, मेरे मरने, मेरे खाने, मेरे पीने से। आप देखिए कि तकवा के लिए एक मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं बार बार देती हूँ इसलिए कि याद हो जाए हम सबको। एक शख्स है, उसकी लेट सी अगर कह लें कि 500 पाउंड महीने की तनख्वाह है, और वो लंदन में रहता है, कसम कुर्सी में गुजारा कर रहा होगा। आप देखेंगे उसके घर में कोई फालतू चीज़ नहीं, कुछ नहीं। उसको पता है कि सिर्फ मुझे बेसिक्स पे जीना है, बेसिक्स पे जी लेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। सबको दिखता है कि भाई ये सफेद पोश है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, किसी की कोई ये बेहुरमती नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि शुक्र है अल्लाह का कि जान छुटी हुई है, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने उसकी आजमाइश शुरू की, अब जाहिर उसके ऊपर फजल किया, 500 की उसकी जो पे थी वो 1,000 पाउंड में बदल गई, किसी भी वजह से डबल हो गई ना पे। आप बताइए कि जब पे डबल होगी तो क्या उसके रख रखाव और घर से या खाने पीने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? पड़ता है ना, ऑफ कोर्स पड़ता है। हो सकता है पहले अपने बच्चों के लिए फ्रूट ना खरीदता हो, फ्रूट खरीद ले। हो सकता है पहले उनको हफ्ते में एक दफा भी आइसक्रीम ना खिलाए, अब एक दफा खिला दे। कपड़े हो सकता है पहले वो ऐसे ही किसी भी आम से स्टोर से ले ले, अब थोड़ी सी उससे अच्छे ले, फर्क पड़ेगा। अब आप सोचिए 500 पाउंड से एक शख्स शुरू हुआ और 2, 3, 6 महीने में उसकी पे 5,000 पाउंड हो गई महीने की, क्या फर्क होगा? सर से पांव तक फर्क पड़ेगा उसके, पड़ेगा कि नहीं? घर ही शहर लगेगा जिसमें इस वक्त तक रहता था। ये तो बहुत थोड़े लोग होते हैं कि उनके पास पैसा भी हो तो वो ना इस्तेमाल करें इस तरह कि हमारी औकात क्या कि हम अपनी जान पे लगा लें और अल्लाह के दीन को पीछे कर दें। अल्लाह के इतने बंदे गरीब गुरबा और हम अपनी जान पे रखें। लेकिन इजाजत है, रुख्सत है, लोग लगा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन हिसाब तो बहरहाल है, जिस तरह दुनिया का माल बढ़ता है ना तो इंसान की का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तकवा को आप कह लीजिए कि ये आखिरत की करेंसी है। तकवा पहले शुरू में बहुत थोड़ा होता है, बिल्कुल आप ये कि पैनीज में तकवा होता है हमारे पास, छोटा सा। हम कहते चलो शुक्र है ना, पहले से तो अच्छी हो ना, चलो दूसरों से तो अच्छी हो ना, क्या हुआ? अब स्काफ तो लेती हो ना, चलो क्या हुआ? फिर क्या सब जो करते हैं नहीं, मैं वो भी तो नहीं करती। तब बंदा ये सोच रहा होता है कि मैं वो नहीं कर रही जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं गुना में। ये कभी नहीं सोचता कि मैं जो कर रही हूँ वो कई लोग हैं वो गुना भी नहीं करते, ठीक है। शुरू का टूटा फटा, जिसको आप कह लीजिए कि कटा फटा सा एक तकवे का एक मेयार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकवा की लेयर्स लगती हैं जिंदगी में। जैसे पे बढ़ती है ना तो ईमान वाले का तकवा बढ़ता है, उसको अल्लाह की नेमतों का एहसास सोने नहीं देता, इसराफ वो कर ही नहीं सकता, फजूल खर्ची उसकी जिंदगी में आती नहीं। और ये कभी किसी के कहने से नहीं होगा, मैं आपको ये भी सच बता दूं, जितना ज्यादा इंसान को अपनी जात को नुमाया करने का शौक है ना, अना आई एम अना खैरो मिन्हु, शैतान का जुमला था, जितना वो अपनी जात के शहर में ना मैं कैसा लगता हूँ, मुझे क्या चुभता है, मुझे क्या सजता है, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, उतना वो अपनी जात को बड़ा करेगा। जिस दिन अपनी औकात समझ आ गई कि मैं तो दुनिया में बड़ी फरलाटे खान बनी फिरती हूँ, लोग मेरी बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन पता नहीं फरिश्ते मुझे देख के कहते नहीं होंगे ये वो है जिस पे अल्लाह को गुस्सा आया रहता है हर वक्त। अल्लाह ही हो सकता है, ये वो है जिसके बारे में अल्लाह ने हमें कहा कि जरा इसको और मोहलत दे दो, ये वो है जिसके ऊपर आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसको खुश होने दो जितने दिन होती है। जब एक बंदे को अपनी वो असल कैफियत दिखती है ना तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो नाफरमानी कर ले। वक्त के साथ इतना तकवा इंसान के पास आ जाए कि उसको छोटे से छोटा गुना, जिसको लोग गुना कहते हैं, उसको पहाड़ लगता है। वो कहता है ये मुझे सजता नहीं है। मतलब आप देखिए ना कि जैसे किसी मुल्क का वजीर, उसकी बीवी, वो इतवार बाजार में जाके शॉपिंग तो नहीं करेगी ना, हु केयर्स कि इतवार बाजार में क्या मिलता है क्या नहीं। उसको ये बड़ी शर्म आएगी कि लोग कहेंगे अच्छा आप इतवार बाजार से करती हैं। ये मैंने मिसाल दी है आपको पाकिस्तान के नाते से, या जहां भी अगर इधर भी कहीं कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई मामला है, लेकिन सिर्फ मिसाल दे रही हूं कि बड़े लोग छोटी दुकानों पर सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि लोग क्या कहेंगे, देखो क्या दे दिया। मिसाल हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, हम पाकिस्तान जाएं, हम यहाँ से कुछ भी उठा के ले जाएं, बस उस पे इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लैंड की मोहर है, लोग ले लेंगे। लेकिन हमारे वहां के मौजूद लोगों में कई ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ के ब्रांड्स भी पता है, वो अच्छा वॉलमार्ट से ले लिया, वो अच्छा ये तुमने सेम्बरी से ले लिया, मिसाल है। और किसी को होगा अच्छा जी ये सेंट माइकल का, ये फलां का, ये फलां है। तो कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं। बस आप इसको यूं समझ लें कि जिस तरह दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाले और परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना, वो ब्रांडेड के पीछे भागते हैं ना, तो मोमिन का ब्रांड तकवा है, हक तुकाती ही। एक आम तकवा होता है जनरल, कोई बात नहीं, स्वेटर है, गर्म है, करता है, अच्छा लग रहा है, ले लो खत्म, ये है तुकाती ही, इत्तकुल्ला। लेकिन हक तुकाती क्या है कि इसको तुमने ऊपर के किसी ब्रांड से लेके आना है कि जो शहर में सिर्फ चंद लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। एक मोमिन कभी आम दर्जे की नेकियां नहीं करता, उसको शर्म आती है ये मुझे नहीं सूट करता। बहुत चीजें आपको पता है कि एक ऐसी भी होती हैं अल्लाह के रास्ते में आने के बाद बंदे को वो छोड़नी पड़ती हैं जो अलाउड भी होती हैं, लेकिन बंदे को सूट नहीं करती।